श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 25 यही है जी आज का इसी है।
मेरे पीछे धूमा रात्रि तथा कृष्ण षट्मासा दक्षिणायना तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते।
मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा।
धूमरात्रि तथा कृष्ण षण्मास दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते।
इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं, मेरे पीछे दोहराइएगा, सुबह आपको बहुत बातें समझ में आएंगी।
धूमा धुआं रात्रि है रात तथा और कृष्ण कृष्ण पक्ष षट मासा छह मास की अवधि दक्षिण अयनम जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है तत्र वहां चांद्रमसम चंद्रलोक को ज्योति प्रकाश योगी प्राप्त करके निवर्तते वापिस आता है। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, मेरे पीछे दोहराइएगा। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। इसका तात्पर्य पढ़ता श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की सुनिएगा ध्यान से।
भागवत के तृतीय स्कंध में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड या यज्ञ कांड में निपुण हैं वो मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की भावना से रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंतत गोत्वा वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सकें। पिछले सप्ताह कौन सा श्लोक हुआ था? लास्ट वीक 24 और उससे पहले 23। एक बार में एक ही हो रहा है ना। 24वां श्लोक पढ़ता हूँ। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण रहता है उन 6 मासों में शरीर से संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इस पर प्रश्न आएंगे। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण होता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इसके बाद आज वाला श्लोक दोबारा से पढ़ता हूँ। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने से 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। अब आता है 26वां श्लोक, जिसको इसके साथ ही करना चाहिए। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश शुक्ल पक्ष और दूसरा अंधकार कृष्ण पक्ष। जब मनुष्य शुक्ल मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता और कृष्ण मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। 3 श्लोक हैं समझने वाले। 24वां श्लोक आपने पढ़ा है, तो 24वें श्लोक में कौन उसके बारे में 2 लाइनें कहना चाहेगा? सुना है आपने, मनन किया है, पढ़ा है, तो जरा 24वां श्लोक थोड़ा सा बताइए, फिर आज की चर्चा शुरू करते हैं। अंदर यहां भी प्रभु कुछ रोशनी डालो, कौशिक माता जी कुछ रोशनी। नोट्स कौन बनाता है? नोट्स माता जी आप बताइए, आप लिखती बहुत है, जोर से थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हुई है और कोई इधर पीछे। तो सो माता जी आप हर सोमवार को आते हैं आप सुनने के लिए, कौन प्राण छोड़ता है?
जो प्राणी,
वेरी गुड। मतलब आज के हिसाब से उत्तरायण में अगर डेथ हो जाती है तो लिबरेट हो गया, और दक्षिणायन में हो गई तो लिबरेट नहीं हुआ। जो भगवान को जानते, आप जानते हैं भगवान कृष्ण है, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता? हरे कृष्णा। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। यहां पर चर्चा हो रही है योगी के बारे में। उस योगी की व्याख्या जो है वो इस पूरे अध्याय के अंदर चल रही है। आठवां अध्याय जो है उसके अंदर योगी के बारे में चर्चा चल रही है। बहुत सारी बातें बताई गई, मुख्य मुख्य बातें मैं उसमें से आपको दो चार वर्णन करता हूं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मना बुद्धि माम एवेश्यसि असंशय। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ सकोगे। भगवान ने इस श्लोक के अंदर, आठवें अध्याय का सातवां श्लोक है, यहाँ चर्चा करी है कि आप किस प्रकार भगवान के धाम में प्रवेश पा सकते हैं, मतलब आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में मेरा स्मरण करना है और मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है। दो बातें आती हैं, मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करता हूं, मैं भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। सेम शब्द है, हाफ सेंटेंस दो में डिवाइड करिएगा, पहले आधा बाद में लगाया है, एक में पहले लगाया। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ, अर्जुन के लिए कर्तव्य पालन क्या है? युद्ध। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ भगवान का स्मरण करता हूं। तो प्राइमरी कर्तव्य पालन हो गया, सेकेंडरी भगवान का स्मरण हो गया। कर्तव्य पालन करते हुए स्मरण छूट सकता है क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे है। अब भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो प्राइमरी क्या है? स्मरण। और सेकेंडरी क्या है? कर्तव्य का पालन। कि स्मरण नहीं छूटना चाहिए, कर्तव्य के पालन में त्रुटि आ सकती है, मिस्टेक हो सकती है, परंतु स्मरण करने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसी बात को जो है भगवान आगे कहते हैं, ये पाठ जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखता है, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है। भगवान के रूप मतलब मैं जो श्याम सुंदर स्वरूप में कृष्ण तेरे सामने रथ पर खड़ा हूं उस रूप में, ना कि निराकार मान लो मेरे को, निर्गुण निराकार के स्वरूप में नहीं, बिंदु मात्र नहीं, ज्योति नहीं, किस रूप में? तो तेरे सामने समक्ष तेरे विराजमान है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता। इतना बताने के बाद भगवान ने फिर दसवें श्लोक में जाके चर्चा करी है योगी के बारे में। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य में स्थिर कर लेता है, योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण करने में अपने को लगाता है, निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। ये एट द एंड ऑफ लाइफ, मृत्यु के समय क्या हो सकता है उसकी चर्चा करते हैं। चौदहवें श्लोक में आगे बताते हैं, अनन्य चेता सत्तम यो मां स्मृति नित्य शह तस्य अहम सुलभ पार्था नित्य युक्त सी योगी ना। कि जो अनन्य भाव से, मतलब जो जिसके चिंतन में मेरे सिवाय और कोई है ही नहीं, अनन्य चेता, जिसकी चेतना में, जिसके चिंतन में, जिसके स्मरण में मेरे सिवाय और कोई नहीं है, निरंतर एक क्षण का भी गैप नहीं है, नित्य हर दिन हर पल हर समय, उसको मैं सुलभ हूं। तस्या अहम सुलभ, सुलभ हूं मतलब तुम पुकारोगे और मैं चला आऊंगा, उस चित से जा जाएगी।
इतना बताने के बाद जो है भगवान बता रहे हैं अब मेरे को स्मरण करने का, मेरे को प्राप्त करने का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्या शाश्वतम नापनुवंती महात्मना समसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्व इस अनित्य जगत में नहीं लौटते क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अर्थात मेरा प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, मेरा प्रेम प्राप्त करके मेरे धाम में आ जाते हैं, इसलिए उनको लौट कर इस संसार में नहीं आना पड़ता। फिर भगवान ने बताया कि मेरे धाम का गुण क्या है और इस भौतिक संसार का अवगुण क्या है, तो बताते हैं आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तन अर्जुना माम उपेत्या तो कौनता है पुनर्जन्मना विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मा जी के लोक से लेकर निम्नतम लोक अर्थात पाताल लोक तक सारे लोक दुखों के घर हैं और दुख है जन्म तथा मृत्यु का चक्र, किंतु है कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दिया कि इस धाम के अंदर पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म होता है बार बार मृत्यु आती है, आप जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते, किंतु मेरे धाम में आ जाते हैं तो आपको इस धाम में दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता। ये भगवान एक एक करके बात को एक्सप्लेन किए जा रहे हैं कि हर काल में मेरा स्मरण करेगा, मृत्यु के अंतिम समय में मेरा स्मरण करेगा तो तेरे को क्या लाभ प्राप्त होने वाला। अब इतनी चर्चा करने के बाद जब अपने लोक की चर्चा करते हैं तब कहते हैं मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। वो काल की गणना बता रहे हैं, अणु से आरंभ होती है, परमाणु से अणु से आरंभ होती है और ब्रह्मा जी की लाइफ तक जाती है। इसके अंदर जो है एक छोटा सा कैलकुलेशन है कि एक दिन के अंदर 8 प्रहर होते हैं, 2 पहर होता है ना, रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का दूसरा प्रहर, रात्रि का तीसरा प्रहर, रात्रि का चौथा प्रहर, प्रहर होता है। इसी 4 प्रहर से दिन बनता है और 4 प्रहर से रात बनती है। 15 दिन से एक पक्ष बनता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष है और 15 दिन कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष की क्वालिटी क्या है कि चंद्रमा जो है उसकी कलाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती है और जब पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा पूर्ण हो जाता, पूर्ण पूर्णिमा जो है उस दिन चंद्रमा पूर्ण है। और जो कृष्ण पक्ष है उसमें चंद्रमा जो है दिन ब दिन घटता जाता है और अमावस वाले दिन वो हमको दिखाई नहीं देता, हमारे लिए अव्यक्त है, अदृश्य है। 15 दिन का शुक्ल पक्ष है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष है, 2 पक्ष मिलकर एक मास बनता है, 2 मास मिलकर एक ऋतु बनती है, 6 महीने या 3 ऋतुएं मिलकर एक आयन बनता है। उस आयन की क्वालिटी क्या है उसको उत्तरायन कहते हैं और दूसरे को दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायन के अंदर जो है सूर्य की मूवमेंट इस तरीके से होती है कि उसकी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती हैं तो गर्मी बढ़ती जाती है। उत्तरायन आरंभ होता है माघ की संक्रांति को, जिसको हम लोग जो है लोहड़ी भी बोलते हैं और माघ संक्रांति भी बोलते हैं, उस दिन उत्तरायण आरंभ होता है और जुलाई के जो संक्रांति आती है उस दिन उत्तरायण समाप्त होकर दक्षिणायन आरंभ हो जाता। तो जैसे ही जो माघ की संक्रांति आएगी आपको लगेगा कि अब दिन जो है बड़े होने शुरू हो गए हैं और रातें छोटी होनी शुरू हो गई है। और जुलाई का जो मिडिल टाइम नेम है 15-16 जुलाई के आसपास, 17 जुलाई के आसपास दिन जो है वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं और रात्रि जो है वो बड़ी होनी शुरू हो जाती है, सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, सूर्योदय देरी से होता है। ये 2 आयन कहलाते हैं, एक उत्तरायन है एक दक्षिणायन, 2 आयन मिलके एक वर्ष बनता है। अब इसके बाद जो है ब्रह्मा जी की गणना है वो आपने करी होगी, कितने लोगों को मालूम है ब्रह्मा जी की आयु की गणना, हाथ खड़ा करो। चतुर्युगी से पहले 4 युग कौन से हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और चौथा कलयुग। कलयुग में रहते हैं ना, जोर से बोले, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की इससे दुगनी है 8,64,000 वर्ष, त्रेता की इससे तिगुनी है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की इससे 4 गुनी है 17,28,000 वर्ष। ये हमारे पास जो है एक कैलकुलेशन है, 4 युग है। 4 युग को जब मिलाते हैं तो कहलाती है चतुर्युगी। चार युगों को जब इकट्ठा कर लेते हैं तो चतुर्युगी कहलाती है। जब 1000 चतुर्युगी आती है, 1000 चतुर्युगी, तो ब्रह्मा जी का एक दिन है वो, और इतना ही अहोरात्रि ब्रह्मा जी का एक रात है। तो ब्रह्मा जी के 24 आवर्स का मतलब ये है 2000 चतुर्युगी। अब उस एक दिन को आप मल्टीप्लाई करिए 30 से तो एक मास, 12 से तो एक वर्ष, और 100 से तो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की, कितना हो जाएगा। अब यहां पर जो है इसके बाद भगवान बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी की रात्रि होते असायवत विलीन हो जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रलय। एक प्रलय कहलाती है, एक महाप्रलय कहलाती है। ब्रह्मा जी के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की जब रात्रि आती है तो सारे जीव अपने कर्म फलों सहित महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं, और जब दिन आता है तो वहां से वापस प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने को कहते हैं सर्ग, और अप्रकट होने को कहते हैं प्रलय। और जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तब महाप्रलय होता है, और उसके बाद जब जीव दोबारा प्रकट होते हैं तो उसे महासर्ग। अब जो है भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया, जैसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर वो वापस नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। अब यहां से जो है आज की स्टोरी आरंभ होती है। मेरा परम धाम अर्थात जहां मैं रहता हूं, उसको अगर प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति वापस नहीं आता। मतलब योगी को योग में इतना एफर्ट करना है कि वो मेरे धाम आ जाए, रास्ते में कहीं अटके नहीं, मेरे धाम आ जाए। कि मेरे धाम में आ जाएगा तो उसको वापस लौटकर नहीं आना पड़ेगा। यही बात पहले बताई, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना। यही बात 15वें अध्याय बताई, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकर यद गत्वा हि निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। मेरे धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। अब प्रश्न ये है कि जब मृत्यु होती है तो जो हम सिचुएशंस, जो हम कंडीशंस देखते हैं, उसके अंदर जीव का क्या होता है। तो भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति द्वारा ही मेरे को प्राप्त किया जा सकता है। जो बात कही अनन्य चेता सप्तम, अनन्य भक्ति, भक्ति आपकी केवल मेरे प्रति होनी चाहिए और किसी के प्रति नहीं। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताया है कि आपकी भक्ति जो है अव्याभिचारिणी होनी चाहिए। इस पे मैं हर बार चर्चा करता हूँ, कुछ लोग नए होंगे उनके लिए दोबारा से बताता हूँ, बार बार सुनना चाहिए ताकि हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए। 2वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहते हैं अव्यवसायत्मका बुद्धि, बुद्धि जो है कैसी होनी चाहिए आपकी, मतलब भौतिक संसार से परे कैसी होनी चाहिए, कि भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। इंटेलिजेंस शुड बी फिक्स्ड इन कृष्णा। ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, इसके ऊपर चर्चा हुई है 2वें अध्याय के 54वें श्लोक से लेकर 2वें अध्याय के 71वें श्लोक तक। अब यहां चर्चा आ रही है कि अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो उनको केवल उनकी भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और भक्ति कैसी चाहिए, अव्याभिचारिणी। व्याभिचार का अर्थ होता है कोई स्त्री पर पुरुष से संबंध स्थापित करती है तो व्याभिचारिणी कहलाती है, कोई पुरुष पर स्त्री से संबंध स्थापित करता है तो व्याभिचारी कहलाता है। निष्कर्ष ये है कि अपना जो है उसको छोड़कर पराये के साथ संबंध कायम करना जो है व्याभिचार कहलाता है। सोल आत्मा अविनाशी है, भगवान का अंश है। भगवान 15वें अध्याय बताते हैं ममय वंश जीव लोकर जीव भूत सनातन, कि ये जीव जो है मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। उस अंश का भगवान के साथ रिलेशनशिप है, हमने उस रिलेशनशिप को भगवान के साथ भुला के संसार के साथ स्थापित कर लिया है, मतलब किसी अन्य के साथ संबंध स्थापित कर लिया है। जो अपना था उसके साथ संबंध स्थापित नहीं किया, भूल गए उसको, और संबंध स्थापित कर लिया है किसी अन्य के साथ। एक व्यक्ति कहता है मैं भगवान का स्मरण करता हूँ। हाँ जी कब करते हो? सुबह 8 से 9 कर लेता हूँ, 7 से 8 कर लेता हूँ, 1 घंटा मैंने रखा हुआ इसके लिए। अच्छा सोते कितने घंटे हो? 8 घंटे। स्मरण कितना करते हो? एक घंटा। अच्छा, 9 घंटे हो गए, 15 घंटे क्या करते हो? संसार का स्मरण करता हूँ। तो भगवान तुम्हें संसार देंगे कि स्वयं को देंगे? क्या मिलेगा?
किसका स्मरण कर रहे हो?
15 घंटे डेली आप जो है संसार का स्मरण करोगे, मतलब आप भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, भक्त बनने की कोशिश कर रहे हो, परंतु आपकी भक्ति जो है वो अव्यभिचारी नहीं है, संसार के प्रति आप अपने आप को समर्पित किए हुए हो। तो भगवान कहते हैं अनन्य चेता, या मेरे को अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। परंतु एक योगी जो प्रैक्टिस कर रहा है भगवान को स्मरण करने का, भगवान की भक्ति करने का, भगवान से अपने आप को जोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, मीन्स योगी की स्थिति पे आने का प्रयास कर रहा है, उसकी गति बताते हैं भगवान। चर्चा जो है अब 24वें, 22वें, 23वें, 24वें, 25वें, 26वें श्लोक में उसकी चर्चा हो रही है, साधारण व्यक्ति की नहीं हो रही है। जो भगवान को जानता नहीं है, जिसने भगवान के साथ योग नहीं किया है, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं है, ये उसकी चर्चा नहीं है। ये चर्चा उसकी है जिसने अपने आप को भगवान के साथ जोड़ा है। वो योगी की चर्चा है कि कौन सा योगी? भगवान कहते हैं कि जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है, जिन्होंने भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लिया है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण रहता है, इन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को पाते हैं। कैसे पाते हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर? सिस्टम क्या है? कैसे पाते हैं? तो छांदोग्य उपनिषद के अंदर 5वें अध्याय के 10वें खंड में 2 श्लोक है, पहला और दूसरा, उसकी चर्चा करते हैं, उत्तर समझ में आ जाएगा। अर्ची, इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है कि अर्ची जो है वो कहते हैं अग्नि के देवता को। अग्नि का जो देवता है अर्थात प्रकाश, बहुत लंबा सफर है इसका, बहुत लंबा डिस्टेंस है, प्रकाश का डिस्टेंस बहुत लंबा। जब जीव जो है शरीर त्यागता है तो जो अग्नि देवता है वो उसको ट्रांसफर कर देता है, हैंड ओवर कर देता है दिन के देवता को। दिन का जो स्वामी है, दिन का स्वामी एक देवता है, ये बात समझ लीजिएगा। क्षण का भी स्वामी है, एक अलग देवता। पल उसका स्वामी है, वो भी एक अलग देवता। प्रहर का स्वामी है, वो अलग देवता। तो जब व्यक्ति जो है प्राण त्यागता है तो जो दिन का देवता है उसके पास जो अग्नि देवता है, जो प्रकाश का देवता है, वो उसको उस सोल को ट्रांसफर कर देता है ना, अब आपके पास पहुंच गई, अब आप इसको आगे ले जाइए। ये रास्ता कहलाता है देवयान मार्ग। छांदोग्य उपनिषद में इसकी व्याख्या है, वो जो दिन का देवता है वो उसको अल्टीमेटली शुक्ल पक्ष जो 15 दिनों को कंट्रोल करता है उस देवता को ट्रांसफर कर देता है। शुक्ल पक्ष की चर्चा हुई है ना, तो शुक्ल पक्ष का एक देवता है वो उसको ट्रांसफर कर देता है। शुक्ल पक्ष का देवता जो है उसको उत्तरायण के देवता को ट्रांसफर करता है, मतलब सोल जो है उसको हैंडिंग ओवर, एक दूसरे को हैंड ओवर किया जाता है। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, जब वो उत्तरायण के देवता के पास ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद वो उसको ट्रांसफर करता है संवत्सर देवता पे, फिर सूर्य देवता पे, उसके बाद जो चंद्रलोक है, ये चंद्रमा नहीं, ये चंद्रमा सूर्य से नीचे है, परंतु जो एक्चुअल चंद्रलोक है वो सूर्यलोक से ऊपर है, तो उस चंद्रलोक के देवता को जो है ये ट्रांसफर कर देता है, और वो चंद्रलोक का देवता जो है विद्युत को ट्रांसफर करता है, और वो उसको ब्रह्मलोक में ट्रांसफर कर देता है, अल्टीमेटली वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। ये उसके लिए है जो कि प्रकाश मार्ग में, मतलब शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण हो और दिन का समय हो, परंतु योगी हो, साधारण व्यक्ति नहीं, उसकी चर्चा हो गई। जब वो ट्रांसफर हो जाता है ब्रह्म लोक के अंदर, फिर चर्चा करेंगे इसके बाद कि ब्रह्म लोक में जाके क्या होता है। जो 25वां श्लोक है इसमें चर्चा आ रही है, धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में जो दिवंगत होता है वह चंद्र लोक में जाता है। इसका मतलब है ये वो रास्ता है जो पितृयान मार्ग कहलाता है। सबसे पहले है धूम, धूम का देवता जो है वो रात्रि के देवता को हैंड ओवर करता है, रात्रि का देवता कृष्ण पक्ष के देवता को हैंड ओवर करता है,
कृष्ण पक्ष का देवता दक्षिणायन के देवता को हैंड ओवर करता है, दक्षिणायन का देवता पितृलोक के देवता को हैंडल करता है, वो आकाश के देवता को हैंड ओवर करता है, वो फिर चंद्रलोक के देवता को हैंड ओवर करता है और अल्टीमेटली जो है वो वहां से चंद्रलोक में जाके स्टेबल हो जाता है। अब इन दोनों की क्वालिटी क्या है? जो सामान्य व्यक्ति है उसने पुण्य कार्य भी किए हैं, पाप कार्य भी किए हैं, ये दोनों गतियां ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व मीन्स ऊपर जाने वाली। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में मेंशन आता है जो सतोगुण में मरते हैं वो उच्च लोकों को जाते हैं, जो रजोगुण में मरते हैं वो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जो तमोगुण में मरते हैं वो निम्न लोकों पर जाते हैं। तो अगर किसी की दक्षिणायन के अंदर भी मृत्यु हुई है तब भी वो ऊर्ध्व लोक चंद्रलोक तक जा रहा हो, वो तमोगुण में नीचे पाताल लोक में नहीं जा रहा हो, वो नरक में नहीं जा रहा है, वो भी श्रेष्ठ है, बुरा नहीं है। परंतु बुराई क्या है कि ब्रह्म लोक के अंदर वो प्योरीफाई होके वापस भगवान के धाम जा सकता है और चंद्र लोक के अंदर अपने कर्मों के फल भोगने के बाद नीचे लौटकर वापस इस पृथ्वी पर आता है। ये डिफरेंस, ये एक फर्क, ये एक चेंज। अब चंद्र लोक के अंदर जो चंद्र लोक में भी स्वर्ग जैसे सुख है तो स्वर्ग आदि सुखों का भोग करने के बाद स्वर्ग लोकों में भोग करने के बाद कर्म क्षीण हो जाते हैं जब, तब वो आकाश में आता है, आकाश से वायु में आता है, वायु से मेघ में आता है, बादल में आता है, वहां से वर्षा वृष्टि में आता है, वृष्टि से अन्न में आता है, अन्न से वीर में आता है, वीर से स्त्री में संचित होता है और फिर कर्म के अनुसार उसे योनि मिलती है। ये उसका बैकग्राउंड बैक प्रोसेस ये किस प्रकार से उसे योनि की प्राप्ति होती है। अब यहां पर जो है एक प्रश्न आता है, प्रश्न क्या आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति का है, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, सिंसियर है, सीरियस है, परंतु किसी सूक्ष्म भोग वासना आ गई, कोई भोग विलास की प्रवृत्ति आ गई, सेंस ग्रेटिफिकेशन आ गई, कहीं इंद्रियां विचलित हो गई, तो उसका क्या होगा? वो डिपेंड करता है कि किस समय उसने प्राण त्यागे हैं, वो ब्रह्म लोक तक जाता है या चंद्र लोक तक जाता है। अगर वो 100% भगवान के प्रति समर्पित है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती है तो भगवान के लोक चला जाएगा, सीधा ठाकुर जी के धाम गया, वो रास्ते में रुकेगा ही नहीं कहीं। ये जो दोनों मार्ग हैं ये रुकावट के मार्ग है, अर्थात जो व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जा पाते यहाँ उनकी चर्चा हो रही है, जो योगी पथभ्रष्ट हो गए हैं ये उनकी चर्चा हो रही है कि वो ब्रह्म लोक तक जाते हैं या चंद्र लोक तक जाते हैं, वो भगवान के धाम तक नहीं जा पा रहे हैं। जहाँ भगवान ने कहा है आ ब्रह्म होना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना मामो प्रत्यय तो कौन था पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता, ये वो मार्ग नहीं है। ये मार्ग है कि उनका कहीं ना कहीं सूक्ष्म भोग वासना थी, वो ब्रह्मलोक जैसे ऊंचे लोकों में गए, वहां जाने के बाद अब या तो ऊपर चले जाएंगे या वहां पे भोग भोगने के बाद भूमंडल पे आके श्रीमानों के घर में धनवान कुलों में आगे जन्म लेंगे, जिसकी चर्चा भगवद गीता के 6 अध्याय के 40वें से लेकर 43वें श्लोक तक हुआ है। और 6 चैप्टर पढ़ेंगे जिसके 40वें से लेकर 43वें श्लोक तक इसकी चर्चा हो रही है। आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको क्विकली जो है थोड़ा सा उनका जो ट्रांसलेशन है पढ़ के सुना देता हूँ। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगी कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे गुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है, ऐसा जिज्ञासी योग शास्त्रों के अनुष्ठानों से परिस्थित होता है। मतलब जिसने कोशिश तो करी है पूरी परंतु फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। सुख भोग, इंद्र तृप्ति, इंद्रिय भोग या तो स्थूल है एंजॉइंग जैसे संसार एंजॉय कर रहा, या सटल है अर्थात सूक्ष्म रूप से जो है अभी व्यक्ति जो है इंद्रिय भोगों के प्रति आकर्षित है। अब ऐसा व्यक्ति योगी है, उसने अपने आप को भगवान से जोड़ा है, भगवान का हमेशा स्मरण किया है, परंतु कभी कभी स्मरण से विचलित हो जाता है और संसार के स्मरण में फंस जाता है, किसी ना किसी चक्र में लग जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जब शरीर छोड़ता है तो ब्रह्म लोक में जाता है, और ब्रह्म लोक में अगर उसकी वासना बहुत ही सूक्ष्म थी, ज्यादा खराबी नहीं करी उसने, मिस्टेक बहुत छोटी सी थी, तो ब्रह्म लोक में वो उसको भोगने के बाद उसकी वासना मिट जाती है, मुक्त हो जाता है, वहीं से भगवान के धाम चला जाता। ये डिपेंड करता है कि इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षण, वो वासना वो सूक्ष्म थी या थोड़ी सूक्ष्म से ज्यादा थी। अब एक व्यक्ति है जिसका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का है, जिसमें न तो भोगों की वासना है, न ब्रह्मलोक के भोगों की वासना, स्वर्ग के भोगों की, स्वर्ग के सुख है उनकी वासना है, परंतु जो भोग सपना जो है भगवान का स्मरण करते 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 अंत काल में भगवान के सगुण साकार रूप के ध्यान से विचलित हो गया लास्ट मोमेंट के अंदर, ऐसा व्यक्ति जो है ब्रह्म लोक तक नहीं जाएगा, वह सीधा योगियों कुल में जन्म लेगा, वहीं से भक्ति आरंभ करेगा और उसके बाद वहीं से लिबरेट हो जाएगा। अब आती है चर्चा कि दोनों तरीके के लोग, एक जिसमें सूक्ष्म वासना थी, एक जिसमें कोई वासना नहीं, अंतर क्या है? एक ब्रह्म लोक में जाके मुक्त होता है और दूसरा योगियों के कुल में जाके मुक्त होता है। मुक्ति दोनों को मिलती है, क्योंकि बड़ी साधारण सी छोटी सी कहीं उसने गलती करी है, उसने कोई बड़ी गलती नहीं करी और भारी मिस्टेक नहीं करी, छोटा सा कहीं सूक्ष्म वासना थी, उसके प्रति आकर्षण था और उसकी वजह से उसके बॉडी, उसकी लाइफ के अंदर एक चेंज आया। अब आती है बात कि एक व्यक्ति है, उसका पर्पस, उसका उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति का है, परंतु वो किसी तरीके से संसारिक सुख भोगों की जो एंजॉयमेंट की उसकी इच्छा है, डिजायर है, उसको नहीं मिटा सका। इंद्रिय भोग है तो इंद्रियों का भोग है, जो इंद्रियों का आकर्षण है उसको नहीं मिटा सका, पर भगवान के प्रति समर्पित है, परंतु बीच बीच में वो इंद्रिय भोगों के प्रति भी आकर्षित हो जाता है। सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है, डिजायर्स सूक्ष्म नहीं है, डिजायर्स स्थूल है, दिखती है। तो अंत काल में जो है जब वो योग से विचलित हो जाता है तो स्वर्ग आता है, तो नवे अध्याय में चर्चा हुई है, स्वर्ग की सुख भोगता है, उसके बाद लौट कर फिर श्रीमानों के घर में धनवान कुल में जन्म लेता है और फिर ग्रेजुअली उसकी श्रद्धा जो है वो भगवान में जम जाती, भगवान में लग जाता है। श्रद्धा दो प्रकार की है, कोई बताएगा दो प्रकार की श्रद्धा कौन सी होती है? कौन सी? एनीवन? श्रद्धा की एक टाइप है स्वाभाविकी। स्वाभाविकी मीन्स व्यक्ति इस भौतिक संसार में आया और भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, देखते देखता है और श्रद्धा जागृत हो जाती है, श्रद्धा बन जाती है, श्रद्धा पनप जाती है। दूसरा जो है श्रद्धा है बलादुत्पादिका, जहां पे कि अंडर कंपल्शन है, उसको बार बार समझाया जाता है, बार बार बताया जाता है, बार बार पढ़ाया जाता है, बार बार किया जाता है, तब उसकी श्रद्धा डेवलप होती है। तब उसकी श्रद्धा जो है डेवलप होती है कि यस अब मुझे भगवान में लगना है। हम में से बहुत सारे लोग जो है वो बलादुत्पादिका श्रद्धा के वजह से भगवान की भक्ति में आए। कितने लोग स्वाभाविकी श्रद्धा से आए, हाथ खड़ा करें। स्वाभाविकी मतलब बचपन से ही श्रद्धा बन गई, बचपन से ही, दिस एज, किसी को बताना नहीं पड़ा, किसी को समझाना नहीं पड़ा। नॉर्मली क्या होता है कि क्लास सुन ली, मंदिर में आए, भक्त से मिल लिए, कोई भगवान के बारे में किसी ने बताया, चर्चा हो गई, थोड़ा थोड़ा किसी से कोई सेशन अटेंड कर लिया, 6 डे सेशन, 7 डे सेशन, 4 डे सेशन, आस्ता 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 आपकी श्रद्धा फिर बन गई। ऐसा ही होता है ना, बलादुत्पादिका मतलब बलात्, बलात् मीन्स आपको कंपेल किया गया है श्रद्धा डेवलप करने के लिए। परंतु जब व्यक्ति के अंदर जो है सुख भोग की कामना होती है परंतु भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य रहता है, तब वो ग्रेजुअली जो है जब आता है स्वर्गीय सुख भोग करके नीचे आता है, लौट कर पृथ्वी पे आता है, पृथ्वी पे आने के बाद फिर उसका मन जो है हौले 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 किसी के बताने पे, किसी के समझाने पे श्रद्धा में लग जाता। अब व्यक्ति का उद्देश्य है स्वर्गीय सुख भोगने का, भगवान की प्राप्ति की बात नहीं करता, भगवान के पास जाता है और पुण्य का कार्य करता है, मुझे स्वर्गीय सुख मिल जाए, उसे भगवान के भाव धाम के बारे में पता ही नहीं, उसे तीन ही बातें पता है, स्वर्ग, नरक और जहां रह रहा है पृथ्वी लोक, चौथे के बारे में पता ही नहीं उसको। हाँ भाई ऐसा काम करो कि मरने के बाद स्वर्ग चले जाए, स्वर्ग में बड़ा सुख है, स्वर्ग में जो है भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बड़े बढ़िया महल है, अप्सराए हैं, ये है वो है, दुनिया भर के लालच उसके मन में समाये हैं स्वर्गिक सुख भोगने के लिए। पुण्य कर्म करता है तो पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं तो स्वर्ग मिलता है, जब स्वर्ग में पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो लौट कर इस पृथ्वी पर आ जाता है। नवा अध्याय पढ़िएगा, उसमें सारी व्याख्या दी हुई है, 21 से लेकर 25वें श्लोक तक सब चर्चा करी हुई। तो यहाँ पर जो चर्चा आ रही है आज की तारीख में, जो हमने श्लोक पढ़ा, अगर हम इसके अंदर जो है 25 के बाद 26वां श्लोक पढ़ते हैं तो वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो ही मार्ग हैं, या तो शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है, अर्थात या तो देवयान मार्ग है या पितृयान मार्ग है, पितृलोक को होके जाता है और दूसरा जो है देवताओं के लोक। दोनों मार्गों में से सिर्फ एक जो पहला वाला मार्ग है उसके अंदर चांस है कि आप ब्रह्म लोक जाके भगवान के धाम चले जाए, वरना दोनों मार्गों के अंदर आप भगवान के धाम न जाके लौट कर इस संसार में आते हैं। यही भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे धाम में आना है तो मुझे केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाए। यही बात जो है भगवान ने कही यहाँ पर इसके 22वें श्लोक में कि अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान यद्यपि अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं, सब कुछ उनमें स्थित है। तो भगवान को प्राप्त करना है तो एक ही चीज चाहिए, अनन्य भक्ति। तो अन्य चीजों में क्या आता है, तो मैंने अभी चर्चा करी कि भगवान को छोड़ के सब कुछ अन्य में है, आपका शरीर भी अन्य में है, ये भौतिक संसार अन्य में है, संबंधी रिश्तेदार मित्रगण ये वो सब अन्य में है, इनके प्रति आकर्षण न होके आकर्षण केवल भगवान के प्रति होना चाहिए, इनके प्रति समर्पण न होके समर्पण केवल भगवान के प्रति होना चाहिए। आज की तारीख में हम लोगों ने भगवान की तरफ पीठ करी हुई है, संसार की तरफ मुख किया और संसार को भोगने की लालसा है। आपको संसार की तरफ पीठ करनी पड़ेगी और भगवान की तरफ मुख करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है कि हम लोग जो है भगवान के पास आते हैं और भगवान से डील करते हैं, कहते हैं मैं सेवक तू स्वामी, करते हैं तू सेवक मैं स्वामी। ठाकुर जी ये मिठाई है, फल है, फूल है, हार है, सब कुछ लेके आए, भगवान के आगे रखा, मेरा टेंडर क्लियर हो जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरा फलाना हो जाए, मेरे बच्चे के एडमिशन हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। भगवान को आपने दाम दिया और भगवान को काम पे लगा दिया, काम पे लगाया कि नहीं लगाया, तो नौकर कौन हुआ, भगवान हुए कि आप हुए, कौन है नौकर, इस सकाम कर्मी हो गए, कामना सहित आपने कर्म किया और उस कर्म के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ा, सकाम कर्म योग, फल मिलेगा, पुण्य का कार्य किया है, फल को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, शरीर धारण करेंगे तो लौट कर इस संसार में आएंगे, भगवान के धाम में नहीं जा सकते। भगवान के धाम में जाना है तो निष्काम कर्म योग चाहिए, कोई कामना नहीं है, भगवान के आगे खड़े होकर जो मर्जी अर्पित किया, कामना एक ही है कि भगवान आज सेवा कम कर पाया हूँ, आपकी सेवा में और कैसे लगूं ये बताइए, आप मेरे हृदय में प्रेरणा दीजिए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी सेवा अधिक से अधिक कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा कर सकूं, किस तरह मैं आपकी सेवा में लग सकूं। कहते हमें सब कुछ भगवान का है, करते हैं सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा है, भगवान को देना होता तो सोचते हैं अच्छा ऐसा है कि आप 51 रुपए दें कि 101 रुपया दें, सोचने लगते हैं। फिर ये नोट फटा हुआ था, बैंक ने वापस कर दिया था, नहीं चल रहा है, चलो गुल्लक में डाल जाते डाल दिया, खोटा सिक्का है, चलो गुल्लक में डाल दिया, कोई नहीं ले रहा, भगवान तो ले ही लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस कंसेप्ट हैज टू बी, तो भगवान के धाम जाना है तो भगवान से प्रेम करना पड़ेगा और उनका प्रेम प्राप्त करना पड़ेगा। तो इन श्लोकों के अंदर जो चर्चा हुई है वो चर्चा हो रही है कि जो अनन्य भक्ति नहीं करते हैं, जो मेरे धाम में नहीं आ पाते हैं परंतु मेरे को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी वजह से नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका रास्ता कहाँ है, वो कहाँ जाते हैं। अब इसमें एक प्रश्न आता है, भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हैं, समय है दक्षिणायन का, इंतजार कर रहे हैं उत्तरायण की, क्यों, इसलिए यस माता आपने हाथ खड़ा किया, दिस इज भाटिया। भगवान कृष्ण के दर्शन रहे इसलिए इंतजार कर रहे थे, जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। भीष्म पितामह को भगवान के धाम नहीं जाना है, ये बात समझ लीजिएगा पहले। इस बात से पुष्टि बोल दिया, क्यों कि वो जो नाम के नवे वसु हैं और उनका डेस्टिनेशन मृत्यु के बाद फिक्स्ड है, उनको वहां जाना है। एक स्पेशल स्वर्ग है जहां पर वसु रहते हैं, वहां उनको जाना है, उनका अपना धाम है, ही हैज टू गो देयर, उसमें प्रवेश करना। परंतु उस धाम का जो दरवाजा है वो उत्तरायण में खुलता है, दक्षिणायन में नहीं खुलेगा। अब वो अगर यहां से दक्षिणायन में चले जाते हैं तो उनको वहां वेट करना पड़ेगा अपने धाम में प्रवेश करने के लिए। जहां वो रहते थे, जहां से आए थे, उसमें जाने के लिए उनको वहां पे वेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, मेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं जब चाहूं तब प्राण त्याग सकता हूं, तो मैं प्राण जो है वहां जाके वेट क्यों करूं, यही वेट करता हूं, ठाकुर जी के दर्शन तो होते रहेंगे। इसलिए उन्होंने जो है उत्तरायण तक वेट किया, दिस वाज द रीजन, क्योंकि वहां जाते हैं तो दरवाजा बन जाए, वो उत्तरायण में खुलेगा, छह महीने खुला रहता है, छह महीने बंद रहता है। तो दक्षिणायन के समय में जाने के समय भीष्म पितामह में जो है उनको दरवाजा बंद मिलता हो, और बंद दरवाजे पे वहां वेट करते, जाना तो अपने घर में है ना, घर उनका वही है। उन्होंने कहा वहां वेट करने से अच्छा है पृथ्वी पर वेट करो, इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहूंगा तब शरीर छोड़ दूंगा। ये भगवान की एक और लीला है इसके अंदर। दूसरी लीला क्या है कि पांडवों के बारे में, कुरु वंश के लोगों के बारे में एक क्वालिटी है, खासतौर पर पांडवों के पास एक क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है कि वो अपने पुरखों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, जो उनके कुरु वंश के पूर्वज हैं, जो उनसे बड़े हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अर्जुन ने कहा ना, मैं पलट कर जो है भीष्म पितामह द्रोणाचार्य पे बांध कैसे चलाऊंगा, क्योंकि मेरे से बड़े हैं वो, उनमें पलट के बांध कैसे चलाऊंगा। उसने किसी और का नाम नहीं लिया, इनका नाम लिया कि इनके ऊपर पलट कर बांध कैसे चलाऊंगा। तो पांडवों की क्वालिटी है कि अपने जो उनके पूर्वज हैं, पुरखे हैं, बड़े हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और उनका मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब भगवान जानते हैं कि अब जो है युद्ध समाप्त हो चुका है और अब इन पांडवों के मन में वैराग्य आ गया। वैराग्य के अंतर्गत जो है राज्य भोगना नहीं चाहते, ये राज्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, वन में जाना चाहते। अब एक लीला और है कि भगवान को अपनी कीर्ति से ज्यादा, अपने यश से ज्यादा अपने भक्तों की कीर्ति प्यारी है, अपने भक्तों का यश प्यारा है। उसका एग्जाम्पल क्या है कि 17 बार हारने के बाद जरासंध जब 18वीं बार आक्रमण करने आया है तो 11,000 ब्राह्मणों को मंत्र जाप करने के लिए बिठा के आया है कि मेरी विजय के लिए प्रार्थना करो, अगर जो है मैं हार गया तो तुम्हारा सर काट दूंगा। और वो 11,000 ब्राह्मण किसकी आराधना कर रहे हैं, कृष्ण की। आप हार जाओ हमारा सर ना कटे, आप हार जाओ ताकि हमारा सर ना कटे, जरासंध जीत जाए, भगवान को हरा नहीं सकता। तो भगवान ने क्या किया, रण छोड़ दिया, मथुरा छोड़ दी, रण छोड़ रहा है कहलाए। तो भगवान को अपनी कीर्ति से ज्यादा भक्तों की कीर्ति प्यारी है। तो भीष्म पितामह जो है भगवान के भक्त हैं और पांडव जो है उनके बड़े हैं, और उन्होंने जो है अपने खुद के योग बल से भीष्म पितामह के मुख से सारा ज्ञान दिलवाया। महाभारत का दूसरा खंड पढ़िएगा, उसके अंदर सारी चर्चा आती है स्त्री धर्म के बारे में, राजधर्म के बारे में, राजनीति के धर्म के बारे में, गृहस्थ धर्म के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में, हर प्रकार की चर्चा जो है भीष्म पितामह के मुख से उन्होंने पांडवों को दिलवाई। इसीलिए वो जो पीरियड था, जिस पीरियड के अंदर जो है भीष्म पितामह ने वो जगह नहीं छोड़ी है, इच्छा मृत्यु का अपना वरदान का वेट करते रहे कि मैं उत्तरायण में जाऊंगा, भगवान ने उस समय को पांडवों को शिक्षा दिलवाने में यूटिलाइज किया, ताकि जो इनके पुरखे हैं, जो इनके बड़े हैं, जो इनके जिनको आदर मान सम्मान देते हैं, जो परिवार के इनके बड़े हैं, मुखिया है, उनकी बात को पांडव टाल नहीं पाएंगे, उनकी बात को मना नहीं कर पाएंगे, उनको रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। दिस वॉज अ वेरी बिग फैक्टर कि भीष्म पितामह की जो लीलाएं चल रही, लीलाएं चल रही। इसी दौरान के अंदर जो है जब भीष्म पितामह बोलते बोलते थक जाते हैं, एग्जॉस्ट कर जाते हैं, तो एकादशी का दिन आता है, तो भीष्म पितामह ने जल की याचना करी है, अर्जुन ने तीर मारा है, वहां से जल की धारा निकली है सीधी भीष्म पितामह को। तो भगवान कृष्ण जो वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा है कि हे भीष्म, तुमने आज पूरा ज्ञान देने के बाद एकादशी के दिन जल की याचना करी है। अर्जुन ने जल को निकाल के तुमको तुम्हारा तृप्ति करी है। ये दिन बड़ा पावन रहेगा और आज से लेके अगले 5 दिन तक जो व्यक्ति क्या फॉलो करेगा, भीष्म पंचक, वो सीधा मेरे धाम आएगा।
हरे कृष्णा,
श्री भगवान की जय। यदि आप प्रश्न है कोई, यही क्वेश्चन है, 5 दिन होते हैं कार्तिक के महीने के अंदर, आखिरी 5 दिन जो है एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक, ये 5 दिन जो है बड़े ऑस्पिशियस गिने जाते हैं। अगर आप पूरा महीना किसी वजह से भगवान की भक्ति में कहीं अधूरे रह गए हैं, तो आप इन 5 दिनों के अंदर जो है अगर वो ऑस्पिशियसनेस को फॉलो करते हैं, आप भक्ति पूर्ण रूप से करते हैं, तो आपको लिबरेशन का चांस है। उसमें कुछ लोग जो है भीष्म पंचक के दिन 5 दिनों के अंदर बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी चर्चाएं आती हैं कि भीष्म पंचक के अंदर कुछ लोग जो है केवल 5 दिनों के अंदर जल का प्रयोग करते हैं और कुछ प्रयोग नहीं करते है। ऐसा करोगे 5 दिन? मैंने तो देखी नहीं। वैसे बहुत कम, हमारे एक शुक्ल वरण प्रभु है वहां पर, क्या नाम है, पंजाबी बाग मंदिर में, वो 5 दिन जो है ये करते हैं। तो चातुर्मास्य के जो है आखिरी 5 दिन होते हैं एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, उसको जो है पंचरात्रि का उपवास कहते हैं। एकादशी से पूर्णिमा तक का 5 दिन का उपवास है। इन 5 दिनों के अंदर जो है आपको एक कार्य और भी करना है, अगर आप कर सकते हैं तो। जो पहला दिन होता है उसमें जो है जो कमल का फूल होता है भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। दूसरे दिन जो है जो बिल्व पत्र होते हैं, वुड एप्पल, उसके पत्ते जो है भगवान की थाईस जंघाओं में चढ़ाए जाते हैं। तीसरे दिन जो है गंध, इत्र बोलते हैं जिसको, इत्र जो है भगवान की नाभि में लगाया जाता है। चौथे दिन जो है जव के फूल होते हैं, भगवान के कंधों पर अर्पित किए जाते हैं। और 5वें दिन जो है मालती के फूल जो है भगवान के सर पे डाले जाते हैं। तो यहाँ जो है कृष्ण जो है भीष्म से कहते हैं, हे भीष्म, तुमने एकादशी को जल के लिए याचना करी और अर्जुन ने बांध से जल निकाला, तुम्हारे तन मन और प्राण संतुष्ट हुए, तो आज से पूर्णिमा तक तुम्हें अर्घ दान से तृप्त कर दो और मुझे संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक व्रत का जो पालन करता है उसी का मेरे धाम आना। ये भगवान ने कमिटमेंट दिया। ये कार्तिक के लास्ट 5 डेज है। बहुत कम लोग करते हैं, कुछ लोग सिर्फ फलाहार करते हैं, कुछ लोग केवल दूध पीते हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ एकादशी प्रसाद खाते हैं 5 दिन। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग टेम्परामेंट है। कुछ लोग दिन में एक बार खाते हैं। भक्त जो है जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जो चातुर्मास्य पूरे चातुर्मास्य के अंदर खिचड़ी को जमीन में डाल के जीवा से लिख करते हैं, वो हाथ से नहीं खाते, और बिना नमक की खिचड़ी होती है, जब चावल दाल उबाली और खा लिए, बड़ी ऑस्टेरिटीज है। तो प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए कहा, भैया प्रचार करो, इतनी ऑस्टेरिटीज करने का फायदा नहीं है, बेस्ट थिंग इज प्रीचिंग इज द एसेंस। चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रचार करिए और अपना ठीक है थोड़ा बहुत जितना पालन हो सकता है उतना पालन कर लीजिए, दैट्स एनफ। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की।